कियारा के जिद करने पर राघव को इशिका को मैसेज करके कियारा के रूम में बुलाना ही पड़ा। हालांकि वो नहीं चाहता था कि कियारा और इशिका ज्यादा मिले। कियारा की तबीयत खराब होने पर मजबूरन राघव को मिस सिंघानिया को मैसेज करके बुलाना पड़ा। इशिका को लेकर कियारा से बहस हो जाने के बाद राघव वहां से बाहर निकल गया। जब वो लिफ्ट के पास गया तो उसी वक्त इशिका लिफ्ट से बाहर निकली थी। इशिका को देखकर राघव इतने खराब मूड में भी उसे वहां रुककर देखने लगा। उसे इशिका जानी पहचानी सी लगी थी। इसे शायद मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, ये इतनी जानी पहचानी से क्यों लगती है, राघव ने इशिका की तरफ देखकर अपने मन में कहा। जब उस दिन इशिका ने कियारा को बचाया था तब उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर आ गए थे। इस वजह से राघव उसे ठीक से देखा नहीं पाया। उसके दिमाग में एक धुंधली सी छवि थी, लेकिन जब आयशा ने बताया कि उसने कियारा को बचाया है तो उसकी उस धुंधली छवि ने आयशा का चेहरा ले लिया था। राघव ने कुछ पल इशिका को देखा और फिर उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इशिका ने भी एक नज़र उसे देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो राघव से नाराज थी क्योंकि वो नक्श को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा था। इशिका कियारा के पास गई और उसका हालचाल पूछने लगी। इशिका के आते ही कियारा का मूड काफी अच्छा हो गया था। इशिका ने बातों बातों में कियारा को थेरेपी के लिए मना लिया था। इशिका और कियारा बातें कर रही थी तभी गौतम और नैना उनकी तरफ देख रहे थे। गौतम ने इशिका की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जिस हिसाब से राघव बता रहा था मुझे मिस सिंघानिया वैसे नहीं लगती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि राघव को कोई गलतफहमी हो गई है। उनकी आंखों में एक मासूमियत है, दिल की काफी साफ लगती है ये मुझे। फिर पता नहीं राघव उनके बारे में वो सब क्यों कह रहा था, नैना ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। कुछ पल इशिका को देखने के बाद गौतम बोला, राघव काफी टाइम से बिजनेस वर्ल्ड में है, इतने दिनों में उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आ गए हैं। हो सकता है कि ये हमारे सामने मासूम बनने का दिखावा करती हो और उसकी असलियत कुछ और ही हो। मैं राघव की बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं इशिका ने कियारा से कहा, तुम्हें इस नई जिंदगी मिली है तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि आगे से किसी चीज के लिए जिद मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी, लाइफ सेवियर, बस तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहना, कियारा ने खुश होकर जवाब दिया। इशिका कियारा से बात कर रही थी तभी उसके पास एक कॉल आया। उसने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ मैम, उस दिन समीर खन्ना और उनकी माँ गायत्री खन्ना पर जो केस हुआ था उसके लिए आपको गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि आप उस वक्त वहीं पर थीं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, इशिका ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से राघव हॉस्पिटल से निकला था तो उसके पास भी पुलिस वाले का कॉल आया था और वो उसे गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहा था। मिस्टर मित्तल, आपकी बहन के लिए आपने जो भी केस किया था हमें उसकी कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वहां मौजूद कुछ लोग गवाही देने के लिए भी आ जाने वाले हैं, आप प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, कांस्टेबल ने कहा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, राघव ने जवाब दिया। जैसे राघव और इशिका के पास कॉल गया था वैसे ही आयशा के पास भी कॉल आया था। वो उसे भी गवाही के लिए बुला रहे थे। आयशा को पुलिस स्टेशन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जब से उसे पता चला था कि कियारा का भाई कौन है तब से वो उस पर हर तरह का एहसान करने की कोशिश कर रही थी। देखना कैसे मैं उसे अपने इशारों पर नचाती हूँ, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी बहन की जान बचाने वाली लड़की इशिका थी, मैं कभी पता चलने ही नहीं दूंगी, आयशा ने इविल स्माइल के साथ कहा। वो अपनी जीत पर खुश हो रही थी तभी उसका मोबाइल बजा। अचानक ही आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने देखा ये कॉल आशीष का था। वो कॉल रिसीव तो नहीं करना चाहती थी पर मजबूरी में उसे कॉल उठाना पड़ा। आयशा ने कॉल रिसीव किया और आईज रोल करके कहा, बोलो क्या काम है। प्लीज आयशा मेरी मदद करो, अगर इस बार मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जान से मार देंगे, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, आशीष ने घबराई आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर आयशा गुस्सा हो गई और बुरी तरह चिढ़ गई थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्सा काबू करके पूछा, बताओ कितने पैसे चाहिए। पांच करोड़, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। क्या कहा, कितने चाहिए, आयशा ने एक बार फिर पूछा। उसे लगा कि शायद आशीष को बोलने में कोई कन्फ्यूजन हो गई होगी। सिंघानिया फैमिली अमीर थी लेकिन इतनी भी नहीं कि उनके बैंक अकाउंट में ज्यादा कैश होता था, ज्यादातर पैसा कंपनी प्रॉपर्टीज और शेयर में इन्वेस्ट रहता था। आयशा ने 3-4 दिन पहले ही आशीष को पैसे दिए थे, उसने इशिका से भी पैसे हड़पे थे तो आयशा को लगा कि कुछ दिनों तक वो अपना मुंह बंद रखेगा। आशीष को उससे जरा भी डर नहीं था, वो सख्ती से बोला, सुनाई नहीं दे रहा क्या, 5 करोड़ रुपए चाहिए, बात मेरी जान पर आ गई है, तुम मुझे नहीं दे सकती तो सीधे सीधे बोल दो, मैं जाकर इशिका से बात कर लूंगा। आशीष के धमकी देने पर आयशा के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे।
आशीष ने फिर से कहा, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगर तुमने मुझे 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं ऐशिका को जाकर सब सच बता दूंगा। मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है तुम्हारा वो राज। इतना कहकर आयशा ने कॉल कट कर दिया था। आयशा ने गुस्से में अपना फोन पटक दिया था। वो जोर से चिल्लाई, इतने पैसे तो उसे अपनी फैमिली से ही मिल सकते थे। कल जब ऐशिका घर पर आई थी तब प्रोजेक्ट चोरी करने की बात राधिका को नहीं बताई थी, पर फिर भी राधिका समझ गई थी। ऐशिका के जाने के बाद से ही वो उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। जो भी हो, डैड इतने पैसे कभी नहीं देंगे, मुझे मॉम की ही हेल्प लेनी होगी, आयशा ने अपने मन में कहा और हिचकिचाते हुए अपने कदम राधिका के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही आयशा कमरे के पास गई, उसने राधिका की आवाज़ सुनी। राधिका ने पूछा, मालविका कहाँ है? कल से वो दिखाई नहीं दे रही है। आदर्श ने राधिका की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, वो कहीं भी गई होगी, जरूर अपने भाई के पास होगी। अच्छा है वो वहीं पर रहे तो, जब भी उसे देखता हूँ मन करता है उसकी जान ले लूं। आदर्श भी वहीं पर था तो शायद उसका काम आसान हो सकता था। ये सोचकर आयशा ने अपने कदम अंदर बढ़ाए और मासूम बनते हुए कहा, मॉम, डैड। उसने जानबूझकर अपनी आंखों को नम कर लिया था ताकि इमोशनल कार्ड खेल सके। आयशा की लाल आंखें देखकर राधिका को दया आई। वो उठकर उसके पास जाना चाहती थी लेकिन वहीं पर बैठी रही। वहीं आदर्श आयशा की तरफ पलटे और सख्त आवाज में बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आयशा, तुमने अपनी मॉम के साथ बदतमीजी की? उनकी बात सुनकर आयशा रोने लगी। वो राधिका की तरफ देखकर बोली, मैं क्या करूँ मॉम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐशिका से जलन होने लगी। मैंने नोटिस किया कि आप मुझसे ज्यादा ऐशिका पर अपना ध्यान देने लगी हैं, बस आपकी अटेंशन पाने के लिए मैंने ये सब किया। आयशा के आंसू उन्हें सच्चे लग रहे थे। वो राधिका के पास आई और उसके घुटनों के पास बैठते हुए बोली, वो तो डॉक्टर मर्चेंट है और इतनी इंटेलिजेंट भी है, उसने आपके लिए रूम प्रोवाइड करवाया और वो मेडिसिन्स भी। मुझे मन ही मन जलन होने लगी कि शायद इसके बाद आपका सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉम, बस यही चाहती हूँ कि मेरी जगह आपकी लाइफ में कोई ना ले।
राधिका ने उसकी तरफ देखा और उसे उठाकर अपने पास बिठाया। उसने आयशा का हाथ सहलाते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है? ऐशिका तो बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की क्योंकि मालविका उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। आगे से ऐसा कभी मत सोचना। क्या सच में? आयशा ने रोते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच में। अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें क्यों बहलाऊंगी? आयशा ने फिर मासूम बनने का दिखावा करते हुए आंसुओं के साथ हंसते हुए कहा, ठीक है तो बताइए, आप फिर सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? ऑफ कोर्स अपनी बेटी से, सिर्फ और सिर्फ अपनी आयशा से, राधिका ने मुस्कुराकर कहा और उसे अपनी सीने से लगा लिया। आयशा की मुस्कुराहट बड़ी हो गई थी, लेकिन तभी राधिका ने कहा, ऐशिका तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है, तुम्हें उसे अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। ऐशिका का जिक्र होते ही आयशा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो राधिका से अलग हुई और नजरें झुकाकर बोली, ठीक है, आगे से मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगी, मैंने जो भी किया उसको भी सुधार लूंगी। आयशा ने राधिका को मना लिया था, अब बारी पैसों की बात करने की थी। आयशा ने घुमा फिराकर बात शुरू करते हुए कहा, मॉम, आज मैं नक्श के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने वाली हूँ, वो मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदने वाला है। मॉम, उससे गिफ्ट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो रिटर्न गिफ्ट में मुझे भी कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके ज्यादा अमीर होने का फायदा उठा रही हो, राधिका ने जवाब दिया। राधिका ने पैसे ऑफर नहीं किए थे क्योंकि आयशा भी अपनी ही कंपनी में जॉब कर रही थी, उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, साथ ही सिंघानिया फैमिली की तरफ से पॉकेट मनी भी। राधिका को लगा कि आयशा ने अच्छे खासे पैसे जमा कर रखे होंगे, इसीलिए उसे पैसों की क्या जरूरत थी। राधिका ने सब कुछ कैजुअली लिया था, ये देखकर आयशा को गुस्सा आने लगा। फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, नक्श के साथ रहते हुए मेरे खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं, अब सब कुछ वही पे करें अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी लग्जूरियस जगह पर जाती हूँ तो मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। तभी राधिका ने उसकी बातों का मतलब समझा और वो बोली, अच्छा ठीक है, समझ गई, ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ऐसा करना कि तुम नक्श के लिए रिंग खरीद लेना, इतने में एक अच्छी डायमंड रिंग आ जाएगी। सिर्फ 5 मिलियन? आयशा ने हैरानी से पूछा। हाँ, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतनी ही दे सकती हूँ और इतने पैसे काफ़ी होंगे, वो एक्चुअली मैंने अपने पैसे ऐशिका को दे दिए, उसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना था, राधिका ने बिना छुपाए सब कुछ सच सच बता दिया। आयशा इस मामले में कुछ बोलती उससे पहले आदर्श ने बीच में चिरते हुए कहा, तुमने क्या सोचकर उसे इतने पैसे दिए? आजकल मार्केट काफ़ी ख़राब चल रहा है, उसे इन सब की समझ नहीं है, अगर हमारे पैसे वेस्ट हो गए तो? राधिका ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा,
लेकिन उसने कहा था कि उसके एक फ्रेंड ने उसे टिप दी है, और क्या हो गया अगर पैसे वेस्ट भी हो गए? उसकी वजह से हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है, उसके आगे वो पैसे कुछ भी नहीं है। मैंने उसे वो पैसे गिफ्ट के तौर पर दिए हैं, वो उसे जैसे चाहे खर्च करेगी, उसकी मर्जी होगी। आदर्श को ये सब अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो राधिका के सामने कुछ बोल नहीं पाए। इसी के साथ आयशा को भी ये एहसास हो गया कि वो आशीष के लिए 5 करोड़ रुपए अरेंज नहीं कर पाएगी। वो कुछ बोल भी नहीं पाई और खोई हुई हालत में नीचे पहुंची। नीचे नक्श उसका वेट कर रहा था, वो काफी खुश भी था। आयशा की गाड़ी में बैठते ही नक्श ने चहकते हुए कहा, पता है आयशा, जब मैंने डैड को बताया कि तुमने मिस्टर राघव मित्तल की बहन को बचाया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उन्होंने मेरे अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर किए हैं और तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए कहा है। ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आयशा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो धीमी आवाज में बोली, पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि मिस्टर राघव मित्तल की बहन के फेवर में मुझे स्टेटमेंट देना है। हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, नक्श ने जवाब दिया और अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही आयशा की नज़र राघव पर पड़ी। वो समझ गई थी कि राघव वहां क्यों आया होगा। वहीं राघव ने भी उसे देख लिया था। आयशा गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी, ये देखकर उसे तसल्ली हुई। आयशा को देखते ही राघव उसके पास आकर बोला, थैंक यू मिस सिंघानिया, यहाँ इतनी दूर आने के लिए। मोस्ट वेलकम मिस्टर मित्तल, आयशा ने जवाब दिया। वो तीनों आपस में बात करते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें वहां इशिका दिखाई दी। इशिका गवाही देने के लिए उनसे पहले आई थी। उस दिन वहां क्या हुआ था, उस बारे में इशिका ने हर एक बात अच्छे से पुलिस वालों को बयान में लिखवा दी थी। बयान देने के बाद जब इशिका बाहर जाने लगी, तब पुलिस वाले ने उससे कहा, मिस सिंघानिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इतने लोगों के खिलाफ होने के बावजूद आपने उस लड़की की मदद की और उसकी जान बचाई। ये वाकई काबिले तारीफ है, और हमारा पुलिस स्टेशन इसके लिए आपको सम्मानित करना चाहता है। हम चाहते हैं इस बारे में सबको पता चले, और हम सबके सामने आपको सम्मानित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इशिका को तो सम्मान मिलेगा, लगता है आयशा को अपमान मिलने का टाइम आ गया है। पढ़कर समीक्षा करो, और कहानी अगर अच्छी लग रही है तो अपना प्यार भी दिखाओ ना यार।